समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।
नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका अरोड़ा। नए भारत के निर्माण के लिए आज हम नई सोच, नए उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक उद्देश्य स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत इस मकसद से की थी कि देश के युवा नौकरी मांगने वाले की बजाय नौकरी देने वाले बने। देखते ही देखते आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप तंत्र बन गया है। 2014 में जहां देश में कुछ 100 स्टार्टअप्स भी नहीं थे, वहीं आज करीब 125,000 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। इतना ही नहीं, यूनिकॉर्न्स की संख्या भी 110 से ज्यादा हो गई है। अभी हाल में नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स ने भाग लिया। समय के साथ साथ जैसे एक पौधे को सींचने के लिए खाद और पानी की जरूरत होती है, वैसे किसी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए नई सोच के साथ नई प्रौद्योगिकी की भी आवश्यकता होती है। ये कैसे हो सकता है, आज इन्हीं सब पर हम पब्लिक स्पीक में चर्चा करेंगे। आज का विषय है देश में स्टार्टअप तंत्र को मजबूत करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया के महासचिव राजू गोयल और महिला उद्यमी मंजुषा बरुआ जी, जिनका अपना एक फूड स्टार्टअप है। नमस्कार, आप दोनों का स्वागत है।
नमस्कार जी।
स्टूडियो की फोन लाइन्स श्रोताओं खुली है। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी दिल्ली का जो कोड है उसके बाद 2331-4444 या 2371-7106 और 2342-10050 पर फोन कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044, जिस पर आप सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर भी #AskAIR के जरिए सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो श्रोताओं, हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। तो आगाज करते हैं अपने कार्यक्रम का। गोयल जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। आज जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो उसके साथ इनोवेशन यानी नवाचार और आधुनिक तकनीकों की भी बात करते हैं। इस संदर्भ में आधुनिक तकनीकों से हमारा मतलब क्या है?
नमस्कार जी, हमको मतलब मुझको इस प्रोग्राम में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसमें ये शेयर करना चाहूंगा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, आधुनिक तकनीक का बहुत बड़ा एक रोल है हमारे नए भारत के निर्माण में, और उसमें स्टार्टअप्स के लिए तो ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि स्टार्टअप जो है वो इन्वेंशन और इनोवेशन के ऊपर बेस्ड होती हैं। तो उसमें आजकल नई टेक्नोलॉजीज जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तो बहुत ही आजकल हमको सुनने में आ रहा है। 5G टेक्नोलॉजी है और इस तरीके से AR VR है और रोबोटिक्स है, ब्लॉकचेन है, IoT, इन सभी का यूटिलाइजेशन होता है स्टार्टअप के लिए, क्योंकि जो उनको नए नए प्रोडक्ट बनाने हैं या जो नई नई सर्विसेज देनी है उसमें उनका सबका यूटिलाइजेशन बहुत ही आवश्यक है। और इसके बहुत सारे उदाहरण हमारे देश में और हमारी इकोनॉमी में आज है
जी। मंजुषा जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आपने एक फूड स्टार्टअप स्टार्ट किया, किस बारे में है, थोड़ा सा हमें विस्तार से बताएंगी?
नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, धन्यवाद मुझे आपके प्रोग्राम में इंक्लूड करने के लिए। ये जो फूड स्टार्टअप है बेसिकली ये हमारा एक ब्रांड है ईस्ट बाय नॉर्थ ईस्ट, जैसे नेम सजेस्ट करते हैं ये नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है। इस ब्रांड के या इस कंपनी के अंदर जो भी हम लोग कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो नॉर्थ ईस्ट से हम लोग लाएंगे सामान। बेसिकली नॉर्थ ईस्ट के बारे में लोगों को बहुत कम पता है, स्पेशली फूड के बारे में, वहां पे किस प्रकार के खाने की चीजें मिलती है, वेजिटेबल्स किस प्रकार के हैं, फ्रूट्स कैसे हैं। सो हमारी कोशिश ये है कि हमारे जो स्टार्टअप है हमारा जो ब्रांड है ईस्ट बाय नॉर्थ ईस्ट, उसके जरिए हम लोग वहां के इंग्रेडिएंट से हम लोग फूड लाइक खाने की चीजें बनाना चाहते हैं। लेकिन हमारा जो पहले हम लोगों ने शुरू की है, हमारे एक भूत जुलोकिया सॉस है, ये एक चिली सॉस है। भूत जुलोकिया का जो घोस्ट पेपर के नाम से जाना जाता है, ये मैं बताना चाहूंगी कि जो श्रोताओं को कि ये बहुत ही ज्यादा तीखी मिर्ची है। वर्ल्ड में नंबर वन इसका तीखापन में माना जाता था, अभी शायद नंबर दो या तीन पे आ गया, लेकिन ये बाय फार एशिया में, भारत के आसपास के ये साउथ ईस्ट एशिया में बाय फार हॉटेस्ट चिली है, सबसे तीखी मिर्ची है। तो इसका ये खाली उत्तर पूर्वी सीमांत में ही वहां पे ही उगाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट में
जी,
असम, नागालैंड, अरुणाचल और मणिपुर में। तो हम लोगों ने सबसे जो पहले ये हमारे स्टार्टअप हमारे कंपनी ने जो लॉन्च किया है, ये है भूत जुलोकिया हॉट सॉसेस, चिली सॉसेस। हमारे छह वेरिएंट के सॉसेस हैं जो हम अलग अलग जगहों पर ऑनलाइन भी बेचते हैं, होटल्स रेस्टोरेंट में बेचते हैं, बॉम्बे दिल्ली, और हम लोग थोड़ा सा एक्सपोर्ट भी करते हैं। और हमारा जो पहले हम लोगों ने शुरू में ये जो स्टार्टअप है हमने खुद ही फंडिंग किया है, लेकिन हमारी अभी पूरा सरकार, उत्तर पूर्वी सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ डोनर जो नॉर्थ ईस्ट रीजन की प्रोग्रेस के लिए है
जी जी,
वो हमारे पार्टनर है 25%, उन्होंने फाइनेंस किया है
जी जी। मंजुषा जी, हम चर्चा जारी रखते हैं, हमारे साथ श्रोता जुड़ गए हैं हमारे पहले दिल्ली से धर्मवीर जी।
हाँ जी,
नमस्कार धर्मवीर जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
नमस्कार जी, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। पहले तो आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आकाशवाणी टीम को और हमारे मेहमानों को
जी, आपको भी
और सुनने वाले श्रोताओं लोग को जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर किसी बच्चे ने स्टार्टअप कर लिया, बिना स्टार्टअप के भी अगर वो कोई काम कर रहा है, मैं एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड मार्केट गांधीनगर से बोल रहा हूँ, मेरे यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग अपने अपने व्यवसाय कर रहे हैं, क्या सरकार इस दिशा में भी कुछ स्टार्टअप मान के इनको क्या लोन अगर चाहते हैं तो अपना आगे व्यवसाय बढ़ाने के लिए, किसी के पास 10 आदमी काम करने, किसी के पास 20, किसी के पास 5, तो इस तरह से ये लोग भी यहाँ बहुत बड़ा व्यवसाय है
जी। गोयल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
जी, इसके लिए जो स्टार्टअप इंडिया की स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें जो फंडिंग अवेलेबल है, वैसे मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे मुश्किल काम स्टार्टअप्स के लिए हमारे देश में फाइनेंस की ही अवेलेबिलिटी, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट ने बहुत सारे उपचार किए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि भाई, क्योंकि फाइनेंस में सबसे बड़ा डर ये रहता है कि भाई फाइनेंस का मिसयूज ना हो, इस कारण से दिक्कत रहती है। लेकिन जो स्टार्टअप इंडिया की जो स्कीम है उसमें फंडिंग अवेलेबल है, और इसमें कुछ पर्टिकुलरली कुछ लोन्स अवेलेबल हैं जो बैंक्स भी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, गवर्नमेंट बैंक्स हैं, दे आर प्रोवाइडिंग। तो उसके लिए मेरे ख्याल से बेस्ट तरीका तो ये है कि जो स्टार्टअप इंडिया की जो वेबसाइट है उस पर जाके और अपनी एप्लीकेशन दें। अभी एक चीज और बहुत अच्छी करी है गवर्नमेंट ने, बहुत बड़ा करीब 1,00,000 करोड़ का एक फंड अनाउंस किया है, जिसमें कि वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन अभी वो बिल्कुल तो करीब 1 महीने पहले ही उसका अनाउंसमेंट जो बजट आया था उसमें किया था। और मेरे ख्याल से ये जब इलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि इस समय लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, उसके बाद जो बजट आएगा तो गवर्नमेंट उस समय इसको अनाउंस करेगी इसकी डिटेल्स स्कीम की। वो स्कीम के बारे में मुझे कोई डिटेल अभी बहुत ज्यादा नहीं है, बट वो एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि नई इंडस्ट्रीज हैं या जो नए स्टार्टअप्स हैं या जो नई बिजनेसेस हैं उनके लिए उसमें फंडिंग अवेलेबल की जाएगी एज रिस्क फंडिंग, और उसमें कोई कॉस्ट नहीं होगी
जी।
तो दैट विल बी ए वेरी गुड थिंग। तो आई थिंक वही एक तरीका है फंडिंग को करने का। अदरवाइज स्टार्टअप्स तो हमारे यहाँ ज्यादातर फैमिलीज भी करती हैं आपस में, जैसे अपने फंड लगाते हैं, प्लस कुछ इन्वेस्टर्स हैं वो भी करते हैं, बट वो नॉर्मली थोड़ा लेटर स्टेज पे करते हैं जब एक आइडिया और उसका प्लान पूरा बन जाता है
जी। दिल्ली से एक और श्रोता जुड़े हैं, रघुविंदर जी। हेलो।
हेलो,
नमस्कार।
नमस्कार जी, रघुविंदर सिंह बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है, फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टार्टअप करना चाहता हूँ एग्रीकल्चर में नई टेक्निक का, तो मुझे क्या क्या सुविधाएं और कहाँ कहाँ मिलेंगी, कृपया बताने का कष्ट कीजिए।
जी गोयल जी, जैसे आज हम हर क्षेत्र में स्टार्टअप देख रहे हैं, कृषि हो, अंतरिक्ष हो, योग हो, तो जैसे रघुविंदर जी भी समझना चाहते हैं, वो एग्रीकल्चर में ऐसे कोई स्टार्टअप है तो उनको किस तरह से सुविधाएं मिलेंगी और टेक्नोलॉजी कैसे एक किसान की सहायता कर सकती है?
जी इसमें एक्चुअली क्योंकि मेरा जो मतलब बैकग्राउंड है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का है, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा ज्ञान है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में स्कीम्स हैं और फूड प्रोसेसिंग में गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट दे रही है, तो मैं ये जो हमारे मतलब श्रोता हैं इसमें उनको ये एडवाइस करूंगा कि वो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग को कॉन्टेक्ट करें नई दिल्ली में, और उनकी वेबसाइट से आजकल बहुत नहीं है, कल तो हर एक चीज ऑनलाइन हो जाती है, और वहां पे कुछ स्कीम्स अवेलेबल हैं, मतलब जैसे फंडिंग पैटर्न फॉर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए वहां पे एक स्कीम है, बेनिफिट्स हैं कई सारे, जैसे कि ग्रांट इन एड है अवेलेबल, 100% ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट है, कंज्यूमेबल्स है, जो भी
और अगेंस्ट इक्विटी भी है, अगेंस्ट इक्विटी सिक्योरिटी भी आप लोग आप गवर्नमेंट रोल लाइक यू नो फंडिंग करते हैं।
हाँ जी हाँ जी
हाँ जी,
तो मतलब इसमें कई चीजें हैं और इसमें मतलब बल्कि आप सुनो अगर साइट पे ही आप क्लिक करके आप अपनी एप्लीकेशन अगर पर्टिकुलरली जो फूड प्रोसेसिंग के लिए है आपका जो मतलब जो स्टार्टअप है वो किस चीज में है ये मुझे मालूम नहीं है, कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो मैंने अज्यूम किया कि वो फूड प्रोसेसिंग में होगा।
जी मंजूषा जी, आपको जोड़ना चाहेंगी इसमें?
मैं यही बताना चाहूंगी, एक्चुअली हमारा ये सेम इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग ही है, बट ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के से होने की वजह से हम लोगों ने फंडिंग वहां से हमको मिलती है, लेकिन ये फूड प्रोसेसिंग जो बता रहे गोयल जी बिल्कुल बहुत सारे स्कीम्स हैं, आपको ग्रांट भी मिल सकता है, आप अगेंस्ट इक्विटी मीन्स जैसे आपको लोन नहीं लेना पड़ेगा सरकार से, आपको अगर आप अपना कंपनी के 10% 25% 20% कुछ देना चाहेंगे सरकार को, अगर आपके आइडिया पसंद है उनको लगे कि इसमें कोई दम है फ्यूचर है तो आपके वो अगेंस्ट इक्विटी आपको फंड करेंगे जिसमें आपका कोई रिस्क नहीं है, फाइनेंशियल रिस्क नहीं है
जी,
वो सरकार रिस्क लेके आपके ऊपर आपके कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे
जी,
तो दैट इज वो जो मेरे बिजनेस मॉडल ये है दिस टाइप के है
जी। दिल्ली से एक और श्रोता है हमारे जीएस चड्ढा जी।
हेलो
हेलो जी चड्ढा जी।
हाँ नमस्कार मैम, जीएस चड्ढा बोल रहा हूँ और हमारे जो एक्सपर्ट आए हैं उनको भी नमस्कार और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं
जी। आपको भी अपना सवाल पूछें।
मेरा सवाल ये है मैडम कि स्टार्टअप के लिए एक तो मिनिमम एज और क्वालिफिकेशन रखी गई है, दूसरा जो व्यक्ति पहले से बिजनेस कर रहा है वो इस स्टार्टअप में आके अपना बिजनेस बढ़ा सकता है क्या?
जी गोयल जी, क्या कुछ मिनिमम एज कुछ एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन है अपना एक स्टार्टअप शुरू करने के लिए?
नहीं मिनिमम एज मतलब मेरे ख्याल से मतलब नाबालिग नहीं होना चाहिए और तो कोई ऐसा नहीं है कोई मिनिमम एज इसमें, मतलब इसमें कोई मैक्सिमम एज लिमिट भी नहीं है, तो मतलब ये नहीं कि आपको कोई यंगस्टर होना जरूरी है या मतलब कोई ऐसे एज की बात नहीं है, बट इसमें ये जरूर है कि
मैंने 47 इयर्स में शुरू किया है बिकॉज ये मैं पहले सर नौकरी करती थी, ये मेरा सेकेंड इनिंग है, सो आई स्टार्टेड इन 47 इयर्स, सो देर इज नो एज लिमिट दैट वे
जी।
उनको आइडिया पसंद आना चाहिए, कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए
और ऐसी भी कोई शर्त नहीं है, कंडीशन नहीं है कि अगर आपका बिजनेस है तो आप उसी बिजनेस आइडिया को अगर लेकर जाएं, इनोवेटिव है, पसंद आए तो आप उसी को स्टार्टअप के रूप में खड़ा कर सकते हैं
जी। मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि ये startupindia.gov.in जो इनकी ये जो वेबसाइट है जो पोर्टल है उसी के ऊपर आप रजिस्टर करके आप अपने को रजिस्टर करिए एज अ स्टार्टअप, तो आपको कई गवर्नमेंट स्कीम्स के बेनिफिट मिलेंगे, मेरे ख्याल से 2 या 3% का आपको लोअर कॉस्ट पे फाइनेंस भी मिलेगा और इनकम टैक्स के भी बेनिफिट्स हैं
जी,
जो उसका एक टाइम लिमिट है 7 इयर्स की है, उसमें भी कुछ चेंज और कुछ एक्सटेंशन अभी होने वाला है, लेकिन ये सब बेनिफिट्स आपको मिलते हैं
जी
रजिस्टर कर लें
जी। गोयल जी, हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, ब्लॉकचेन की बात की, मशीन लर्निंग से, तो ये जो टेक्नोलॉजीज है वो किस तरह से सहायक होती है एक स्टार्टअप की ग्रोथ में?
जी इसमें जैसे अगर आप अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो यू नो स्टार्टअप उसको यूज करते हैं फॉर यू नो यूजिंग यू नो ए मिक्स टेक यू नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स को यूज किया है. इसमें जो सर्विस इंडस्ट्री ने तो बहुत ही इसको मतलब एक्सटेंसिवली यूज किया है. जैसे कि मतलब यू नो फ्लिपकार्ट वगैरह है उस टाइप के जो यू नो जो हमारे यहाँ बहुत जोमेटो है इन लोगों ने यू नो डेटा एनालिटिक्स का यूज बहुत किया है. यू नो ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी जो हम बोलते हैं ये नए कॉन्सेप्ट हैं बट इनका यूज बहुत तेजी से बढ़ रहा है. तो इसमें ये भी है कि मतलब इन चीजों का थोड़ा डर भी है बिकॉज इनका मिस यूज भी होता है और आजकल हम बहुत सुन रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत यूज हो रहा है और आइडेंटिटी का थेफ्ट हो रहा है और रियल कौन है और उसका यू नो डिजिटल ट्विन का एक कॉन्सेप्ट आ गया है. जब यू नो डिजिटल ट्विन आपका ही ये लोग यू नो बना देते हैं तो आपका जो आपकी जो आइडेंटिटी है जो आपका जो आपकी डिजिटल आइडेंटिटी है दैट कैन बी स्टोलन योर यू नो योर एसेट्स कैन बी स्टोलन. आपका जो बैंक है उन बैंक में भी मतलब आपके जो अकाउंट्स में तो लोग जो पैसा बहुत निकाल लेते हैं गड़बड़ करते हैं तो इस टाइप की चीजें हैं तो वी हैव टू बी केयरफुल. लेकिन इसके बगैर तो दुनिया आगे बढ़ेगी नहीं ये तो बिल्कुल साफ है. हम लोगों को जैसे 5G का बहुत बड़ा रोल है आजकल वो कम्युनिकेशन के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते. डिजिटल इंडिया है कितना बड़ा काम हिन्दुस्तान में हो रहा है तो इसी से हम अपनी यू नो अपने जो हमारे लोग हैं देश के दूर दूर दराज में गांव में छोटे शहरों में उनको हम सबको अपने साथ जोड़ रहे हैं उनको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन. तो ये तो यू नो ये सब टेक्नोलॉजी है और ये सब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मिक्स है और सॉफ्टवेयर का यूज इसमें बहुत एक्सटेंसिव है.
जी मंजूषा जी आपने अभी बताया कि 47 वर्ष की उम्र में आपने स्टार्टअप शुरू किया तो आपको मन में उस समय कोई शंका नहीं थी और कैसी जर्नी रही आपकी यहां तक पहुंचने में?
बिल्कुल भी नहीं. एक्चुअली जब मैंने इंडियन ऑयल से थोड़ा अर्ली रिटायरमेंट लिया जिसको VRS बोलते हैं वॉलंटियर रिटायरमेंट 20 साल काम करने के बाद नौकरी करने के बाद तो मैं चाहती थी मैं असम से हूं और मैं चाहती थी कि आई शुड गिव बैक समथिंग टू नॉर्थ ईस्ट बिकॉज मैं कभी वहां रही नहीं हूं बिकॉज पढ़ाई के चक्कर में दिल्ली में स्कूलिंग फिर बॉम्बे में फिर नौकरी के चक्कर में पूरे मिस भारत में इधर लाइक यू नो हर जगह थे बॉम्बे कलकत्ता दिल्ली. सो आई वांटेड टू गिव बैक समथिंग तो उसी आइडिया से मैंने ये शुरू किया. इसीलिए ब्रांड का नाम भी ईस्ट बाय नॉर्थ ईस्ट है और हम लोगों ने हम चाहते थे कि नॉर्थ ईस्टर्न क्विजिन को प्रमोट करें बिकॉज लोग तरह तरह के सवाल पूछते हैं कि आप नॉर्थ ईस्ट से हैं आप क्या खाते हो आप लोग वहां पे कुछ खाते हो ये खाते हो बिल्ली खाते हो. सो आई वांटेड टू शो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में क्या स्पेशलाइज मीन्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ चीजें मिलती हैं वहां पे. सो इस आइडिया से मैंने शुरू किया है. शुरू में अपने पैसे से ही लगाया अपने लाइक फर्स्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपना ही है खुद का है. देन उसके बाद थोड़ा सा जब स्टेबल हुआ आफ्टर अबाउट ईयर एक साल बाद सरकार से मदद मांगी और तुरंत मिल गया बिकॉज उनको कॉन्सेप्ट पसंद आया और ऑलरेडी ये एग्जिस्टिंग मार्केट में था दे कुड सी दैट थोड़ा सा ये सक्सेसफुल है तो फिर दे केम ऑनलाइन और उसके बाद चल पड़ी. ओनली थिंग इज दैट कोविड बीच में आ गए सो दैट्स वाई थोड़ा सा उसमें स्लो ग्रोथ हुआ. अभी हम लोग थोड़ा स्टेबल हो रहे हैं एंड आई वुड गिव होल क्रेडिट टू सरकार कि अगर वो नहीं होते तो मैं अपनी दुकान बंद कर चुकी होती बिकॉज बहुत हिम्मत मिली है नॉट ओनली फाइनेंशियली इवन मॉरली वी गॉट लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट. एंड टूडे आज मैं बताना चाहूंगी कि वी आर steadily, we are very steady in the market and looking for a brighter future. Hopefully, अभी हम लोग नए प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च करने की सोच रहे हैं.
जी आपको बहुत शुभकामनाएं इसके लिए.
थैंक
यू वेरी मच. गोयल जी एक और सवाल पूछना चाहूंगी. जैसे कोई छोटा स्टार्टअप है आगे बढ़ने में तकनीक का इस्तेमाल करना चाहता है पूरा ज्ञान नहीं है तो कोई प्लेटफॉर्म है किस तरह से वो जानकारी ले सकता है?
जी इसकी जानकारी के लिए मतलब या तो एक ये तरीका है कि यू नो इंडस्ट्री से कनेक्ट बने तो जैसे हम लोग जैसे नो हमारा एसोसिएशन है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का तो हम लोग स्टार्टअप को हेल्प करते हैं जो हमें कुछ यू नो प्रोग्राम्स करते हैं उनके लिए और हमारा फोकस जो है वो तो सर ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर की तरफ रहता है क्योंकि हार्डवेयर एक बहुत बड़ा हार्डवेयर से मेरा मतलब है जो मैन्युफैक्चरिंग है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि बहुत बड़ा एक रिक्वायरमेंट है तो हम लोग उसमें हेल्प करते हैं. गवर्नमेंट डेफिनेटली हेल्प करती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो है जो कि एनआईटी के नाम से है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, उसमें एक स्टार्टअप हब है। अगर उसी की वेबसाइट को कोई देखेगा, मैंने इस तरह मतलब इतने छोटे प्रोग्राम में उसकी डिटेल बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर कोई माइटी की हार्ट मतलब दोनों की वेबसाइट देखेगा तो उसमें वो माइटी जो स्टार्टअप हब में क्लेम करेगा तो वो लोग इसको फैसिलिटेट करते हैं और अक्सर हम लोगों के थ्रू ही वो काम करते हैं। जैसे वो वहां कोई ऐसा किसी यू नो स्टार्टअप का रिक्वायरमेंट आता है तो हम उनको फिर जो टाइप के जो आरएनडी के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं या जो हमारी अपनी इंडस्ट्रीज हैं जो मेंबर्स हैं जो कि चाहती हैं उस एरिया में काम करना, तो स्टार्टअप और इंडस्ट्री का जो यू नो मिलन है, जो एक यू नो कोऑपरेशन है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है उसका हमारे प्रोग्राम। वो हम करवाते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कंपनियां हैं या जो टेक्नोलॉजी वाली हैं उनको मैं ये करूंगा मतलब ये सजेस्ट करूंगा कि वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट में माइटी स्टार्टअप हब के नाम से है, उस पर वो क्लिक करें और वो अपनी रिक्वेस्ट उस पर डालें। वो रिक्वेस्ट जो है वो सही ऑर्गेनाइजेशन के पास जाती है।
जी, आप स्टार्टअप इंडिया भी देख सकते हैं, आप वेबसाइट पे क्लिक करें तो आपको बहुत जानकारी मिलेगी अगर कोई स्टार्टअप अपना शुरू करना चाहता है। मंजूषा जी, जब आपने अपना स्टार्टअप शुरू करने की सोची तो आपके परिवार में उस एज में किसी ने कुछ विरोध नहीं किया या कुछ कहा नहीं, या पूरा सपोर्ट मिला आपको?
बहुत सपोर्ट मिला। इनफैक्ट बिकॉज मैंने अर्ली रिटायरमेंट लेने से दुखी थे, क्यों आप लाइक यू नो एट द एज ऑफ 45 आप क्यों इतना जल्दी छोड़ रहे हो, सो 44 सो मैंने एक दो साल लिया टाइम, ऐसा नहीं कि मैंने एकदम ही शुरू किया, बिकॉज सोच रही थी क्या करूं, बिकॉज यूजुअली क्या होता है जो आप जिस फील्ड से आते हो आपको कंसल्टेंसी मिलते हैं मेनली, सो एंड आई मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था। मैं कुछ करना चाहती थी स्पेशली एज आई सेड अपने रीजन के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए। सो इट वॉज अ गिव बैक टाइम, सो उसी उद्देश्य से मैंने ये सोचा और पूरा अपना पैसा लगाया, ऐसा भी नहीं कि बिकॉज मैंने बैक एंड में, बिकॉज मैं एक बहुत ही प्रोफेशनल कंपनी खड़ा करना चाहती थी, ऐसा नहीं कि बस ऐसे सॉस किसी से बनवाया बेच दिया बॉटलिंग करके। तो बैक एंड में मैंने बहुत ज्यादा पैसा खर्चा किया है, जैसे बैक एंड इन द सेंस रिसर्च में, लाइक यू नो वी डिड मार्केट सर्वे, वी डिड प्रोडक्ट टेस्टिंग, वी डिड प्रोडक्ट रिसर्च, और मेरा जो टीम है रिसर्च का, आरएनडी इज अ वेरी स्ट्रांग टीम, जो एक मेरे ही एक फ्रेंड थी, शी सेम टाइम जिस टाइम पे मैं इंडियन ऑयल से रिटायर हो रही थी, वो यूनिलीवर से रिटायर हो रही थी, शी वॉज हेड ऑफ आरएनडी फॉर यूनिलीवर, सो वो शी हेल्प मी इन दिस होल ब्रिंगिंग अप दिस होल स्टार्टअप, बिकॉज शी इज वो फूड टेक्नोलॉजिस्ट है। सो हम लोगों ने पूरा ट्रैवल किया, देन वी थॉट इंडिया के पास अपना हॉट सॉस ब्रांड क्यों नहीं है, जो भी है छोटे मोटे जो चिंग्स एंड टॉप्स वो लोग बेसिकली वो वेरी नॉर्मल चिली सॉसेज है, लेकिन अभी भी जो हमारे लोग हैं यहाँ पे, अभी भी हम लोग टोबैस्को, रेड रूस्टर, सिराचा, नैंडो जो इम्पोर्टेड होके आते हैं वो सब खाते हैं। तो हम चाहते थे कि एक अपना इंडियन ब्रांड खड़ा करें हॉट सॉस की, चिली सॉसेस की। सो एंड इससे स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट का ये जो चिली है, मैं हम लोग हैरान थे कि अब तक किसी ने कुछ किया क्यों नहीं था।
जी जी,
मेरे लॉन्च करने के बाद बहुत लोगों ने ये लॉन्च किया है, बहुत नेशनल कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी, बट तब तक किसी ने किया नहीं था, और फैमिली से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिले, इनफैक्ट दे वांटेड कि मैं कुछ करूं।
जी, आपने एक अच्छी सोच के साथ अपने स्टार्टअप की शुरुआत की, तो जाहिर है उसको बहुत अच्छा प्रोत्साहन भी मिला और आप आगे भी बढ़ी। राजस्थान जयपुर से हमारे साथ श्रोता जुड़े हैं राज जी। हेलो।
हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम।
गुड इवनिंग,
हैप्पी होली मैम आपको और एक्सपर्ट को हमारे।
सेम टू यू एंड जी।
मैम मेरा एक्चुअली क्वेश्चन था, मेरी अभी 12th कंप्लीट हुई थी मैम, एंड मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ था, इकोनॉमिक्स में मेरी पढ़ाई है। मैम मैं ये पूछना चाहता था कि जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसके लिए गवर्नमेंट को क्या क्या स्कीम्स वगैरह या फिर एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या लाना चाहिए, या फिर उनको क्या क्या चीजें नई नई करनी चाहिए एजुकेशन पॉलिसी में कि स्कूल टाइम से एक स्टार्टअप को लेकर एक एनवायरमेंट बच्चों के दिमाग में क्रिएट होना चाहता है, इसमें मैं थोड़ा सा एक्सपर्ट से जानना चाहता हूँ।
जी गोयल जी, आप एक युवा स्टार्टअप, भावी स्टार्टअप जो शुरू करना चाहता है उसके लिए आप क्या कहेंगे?
नहीं, जो हमारे श्रोता हैं ये मतलब अभी पढ़ाई कर रहे हैं या?
जी जी, अभी 12th इन्होंने एग्जाम दिए, इकोनॉमिक्स के छात्र हैं और वो चाहते हैं कि कैसे स्कूल में एक एनवायरमेंट बने ताकि उनको प्रोत्साहन मिले स्कूल में ही आगे बढ़ने का, एक स्टार्टअप शुरू करने के लिए?
देखिए, ये काम ऑलरेडी गवर्नमेंट ने शुरू किया हुआ है, अभी तक जो चीज पे ध्यान नहीं था, लेकिन पिछले कुछ सालों में एक तो हम लोगों ने सुना है, ये अटल टिंकरिंग लैब्स का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया गया, ये ज्यादातर स्कूल्स में ही है और इनके कुछ इंडिपेंडेंट लैब्स भी हैं जहां पे कि इन्हें टीचर्स को जाता है। ये मतलब एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का अटल टिंकरिंग लैब्स के नाम पे, जो कि शायद सुना भी हो, ये बहुत युवा है तो इनके लिए आगे तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आजकल मैं कहता हूँ। जिस तरह हमारा देश है जिन्हों प्रगति पे है और जितनी हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो बहुत चीजें हो रही हैं जो ये कह रहे हैं, इस बात से बिल्कुल ठीक है। अब इन्होंने जैसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए कोर्सेज शुरू कर दिए गए हैं यूनिवर्सिटीज में, इनोवेशन पे R&D पे शुरू कर दिए गए हैं, और जो हमारी जो स्टार्टअप इंडिया में कई सारे प्रोजेक्ट हैं जिसमें के इंजीनियर्स को या जो भी लोग करना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं कि खाली इंजीनियर हो, साइंटिस्ट बहुत होगा जो साइंस करती है तो वो इनोवेशन करें। तो अब हम लोग कुछ ओवरसीज फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन का भी हम लोग एग्जाम्पल थोड़ा फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज लोग और देशों में कर चुके हैं तो उसको भी किया जा रहा है। तो अभी इस चीज में मतलब अब स्टार्टअप के लिए फंडिंग भी अवेलेबल है, क्योंकि पहले से तो बहुत इम्प्रूव हो गई है सिचुएशन। 1 लाख से ज्यादा है रजिस्टर्ड स्टार्टअप ने कंट्री में, कभी हम सोच नहीं सकते थे 5 साल पहले ऐसा होगा।
गोयल जी, जैसे सरकार डीप टेक स्टार्टअप नीति लाने के प्रयास में है, जिसे हम अत्याधुनिक स्टार्टअप नीति भी कह सकते हैं, तो किस तरह से वह सहायक होगी?
देखिए, ये मतलब एक ये डायरेक्टली सब्जेक्ट को एड्रेस करेगी। इस पे आई थिंक सबसे बड़ी चीज तो ये है कि भाई रिस्क लेने की कैपेसिटी हमारी बढ़नी चाहिए। अभी तक हम लोग रिस्क नहीं ले पाते हैं क्योंकि हमारा जो फोकस है वो सिक्योरिटी पर रहता है। इसीलिए अगर हम देखेंगे तो 10-20 साल 25 साल पहले तो ये था कि भाई हमको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो हमारी लाइफ सिक्योर हो जाए
जी।
लेकिन अब वो जमाना बदल चुका है। अब जितने भी बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि हम अपना काम करें, तो इसमें ये स्कीम तो बहुत काम करेगी ऑलरेडी। मतलब अगर किसी जैसे अगर इन्होंने थोड़ा स्टडी किया हो तो डिफेंस मिनिस्ट्री की एक आईडेक्स के नाम से स्कीम है जो कि पिछले 6-7 साल में भी शुरू करी गई है और वो बहुत सक्सेसफुल है। उसमें वो अप टू 5 करोड़ तक वो फंडिंग देते हैं और वो डिफेंस के लिए यूज हो रही है, बहुत सक्सेसफुल। बहुत हमारे जो नई टेक्नोलॉजी जो डिफेंस में एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, आर्मी के लिए डेवलप हो रही है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, लेजर टेक्नोलॉजी है, नाइट विजन है, बहुत तरह की, तो वो बहुत सारे स्टार्टअप है। मुझे इस वक्त एग्जैक्टली गिनती नहीं पता, बट अगर IDX के नाम से आप सर्च करें तो IDX का एक वेबसाइट, उसमें डिटेल है, तो उससे पता लगता है कि गवर्नमेंट ऑलरेडी चीजों पर काम कर रही है
जी, जी, जी।
और इसका बेस्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, जितने भी श्रोता यहाँ जुड़े हुए हैं, मुझसे यही कहूंगा कि वो स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पर जाएं
जी।
तो उसमें ना ही केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज लिस्टेड हैं, उसमें सब स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज लिस्टेड हैं,
तो उनसे वे जानकारी हासिल कर सकते हैं। मंजूषा जी, बस जाते जाते अब कुछ सेकंड है, और जाते जाते मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि हमारे श्रोता को मोटिवेट करें कि कैसे वो अपना नया स्टार्टअप शुरू करें।
मैं पहले बताना चाहूंगी कि कोई इसका स्टार्टअप का कोई एज नहीं है, आप किसी भी टाइम जस्ट एक अच्छा आइडिया होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एंड आपको फंडिंग का आज बहुत, जैसे गोविंद जी ने बताया कि आजकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट आपकी आइडिया जस्ट आप डटे रहिए, सोचिए, गेट गुड इनोवेटिव आइडियाज एंड आपको फंडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप शुरू कर सकते हैं
जी।
और कोई एज लिमिट नहीं है,
बिल्कुल
ऐसा नहीं कोई यंग होना चाहिए, कोई एब्सोल्युटली नथिंग। मैं 45 के बाद शुरू किया है, सो एब्सोल्युटली आई एम कंफर्टेबल एंड बहुत ही मदद मिली है सरकार से, स्पेशली दिस इज द राइट टाइम
जी। अपने ऊपर बस विश्वास रखें, युवाओं से यही कहेंगे कि नई सोच और नए जज्बे के साथ आगे बढ़िए और विकसित राष्ट्र के निर्माण में अपनी एक नई कहानी लिखें। आप मंजूषा जी और गोयल जी, आप दोनों का स्वागत हमारे, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, और अपने श्रोताओं का भी धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने सवाल पूछे और कार्यक्रम में योगदान दिया। श्रोताओं, पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त करते हैं, अगले सप्ताह सोमवार रात ठीक 9:30 बजे फिर उपस्थित होंगे। प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति, नमस्कार।